का मूड नहीं लगता टू वर्क विद द यूरोपियंस. इसने ये जो स्टेटमेंट दी है वहां जाने से पहले कि रशिया को वापस ले आना चाहिए और G7 को G8 बना देना चाहिए, उससे यूरोपियंस बहुत अपसेट हैं. और उसकी दो तीन वजह हैं जो जिनको देखना चाहिए. एक तो ये कि ये G8 में से ओबामा ने रशिया को निकाला था इन ऑर्डर टू पनिश इट फॉर व्हाट इट वाज द एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया. तो अब ट्रंप की पॉलिसी ये है कि जो कुछ भी ओबामा ने किया उसको रिवर्स करना है. और यूरोपियंस बहुत इस चीज से खौफ ज्यादा हैं, तो वो नहीं चाहते कि ये रशिया को इतनी अहमियत दी जाए जो ये ट्रंप दे रहे हैं, क्योंकि उसका फिर जोर बढ़ता जाएगा. इन्होंने ये जो एल्यूमिनियम और स्टील पे टैरिफ लगाए हैं उसको यूज किया है कि ये बड़ा पुराना क्लॉज है. एक्ट पास किया था कांग्रेस ने काफी अरसा हुआ कोल्ड वॉर के जमाने में कि जो इम्पोर्ट्स आती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं. यानी कि अगर सामान आ रहा है ऐसे मुल्क से कि जिससे झगड़ा हो जाए वो सामान वो रोक दें तो इनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे असर
पड़ता है जी.
तो इसने भी वो सिक्योरिटी के को यूज करते हुए सिक्योरिटी क्लॉज को यूज करते हुए ये लाए हैं. मुझे जो सबसे बड़ा खौफ है वो ये है कि ये WTO को तबाह कर देंगे.
मुर्तजा हैदर साहब, क्या तवक्कोआत वाबस्ता कर रहे हैं आप इस सूरत हाल से?
हमारे कनाडा में जो बात इस वक्त ज्यादा चल रही है वो टैरिफ्स के हवाले से है कि हम पर भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं जो कैनेडियन स्टील और एल्यूमिनियम है. गो कितना बड़ा अमाउंट नहीं है, गालिबन तकरीबन 6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं कनाडा से स्टील की और तकरीबन 6 बिलियन की ही इम्पोर्ट्स हैं अमेरिका से. तो वो इतना बड़ा कोई हमारे जो ट्रेड है जो 75% ऑफ द इकोनॉमी कनाडा की वो ट्रेड है उसमें इतना बड़ा नंबर नहीं है. लेकिन शायद लोग डर रहे हैं कि ये स्टील से शुरू होकर और एल्यूमिनियम से शुरू होकर कहीं और चीजों पर ना चला जाए और उससे फिर हमारी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है अमेरिका के ट्रेड में वो मुतासिर ना हो.
अच्छा,
लेकिन ये सब अनचार्टेड एरियाज हैं, कुछ लोग हैरान होकर देख रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है.
अच्छा, नेफ्टा का क्या फ्यूचर नजर आता है आपको?
आई थिंक जी नेफ्टा इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा. ये अभी जो नीजर्क रिएक्शंस हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज को तो देखने कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं. आपने टैरिफ्स लगा दिए तो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट बढ़ गई. जब कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट बढ़ गई अमरीकी प्रोड्यूसर्स के लिए तो जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ेगी. उसकी कॉस्ट के बढ़ने से उनकी सेल की कैपेबिलिटी जो है वो मुतासर होगी. तो ये जब तक एक साइकिल पूरी नहीं गुजरेगी और अमरीका के अपने प्रोड्यूसर्स नहीं हुकूमत को बताएंगे कि टैरिफ से उनको फायदा हुआ या नुकसान, तब तक ये जानना मुश्किल है कि सरकार जो है लॉन्ग टर्म क्या सोचेगी. ये जो फैसले हुए हैं इनके असरात डोमेस्टिक इकोनॉमी पे जब नमूदार होंगे उसके बाद सही पता चलेगा कि नेफ्टा का फ्यूचर क्या है. अमेरिका की रस्ट बेल्ट है कि जहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और उनकी जिस फ्रस्ट्रेशन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब हुकूमत में आए, उनको उस रस्ट बेल्ट की इकोनॉमी को रिवाइव करना है और उसकी रिवाइवल के लिए शायद उनको कोई इस तरह के नी जर्क रिएक्शंस करने पड़े. तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत मुतासिर हुई है और कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बिल्कुल रोजगार खत्म हो गया था. तो जहां हम इसको इंटरनेशनली देख रहे हैं ट्रेड को, आई थिंक एट द स्टार ऑफ द थिंग आपको अपने मुल्क में भी तो देखना है कि रोजगार बढ़ रही है कम हो रही है और फिर उसके बाद पॉलिसी बननी है. और ये चीज जो बुनियादी है वो ये कि लोग अपने इक्तसाद को पहले देखेंगे और दूसरों के इक्तसाद को बाद में देखेंगे.
अगर रूस का जैसा कि कहा है ट्रंप साहब ने उनको लाने के लिए G7 में, यूरोप इसको एक्सेप्ट कर लेगा?
मेरे हिसाब से रूस का इस टेबल पे होना बड़ा जरूरी है क्योंकि रूस की अदम मौजूदगी ने जो हमने मिडल ईस्ट में होते देखा कि किस तरीके से एक अनबैलेंस हो गया है मिडल ईस्ट में और जहां ये जितनी भी जो शिद्दत पसंद मजहबी हैं उनको सपोर्ट मिल रही थी मुख्तलिफ ममालिक में, वहां अगर रूस ना आता तो ये दाएश और ये लोग चढ़ दौड़ते अब तक हम पर. तो ये जरूरी है कि आप उसको बड़े ग्लोबल तनाजुर में देखें कि जहां रूस का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको यूक्रेन में नजर आ रहा है तो फिर उसका जो शाम में और दूसरे ममालिक में पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जहां वो मजहबी जुनूनियों के खिलाफ खड़े हुए हैं
जी,
तो उसको भी देखना पड़ेगा.